एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनके नाम से ही अक्सर युद्ध, रणनीति और शायद थोड़ी कड़वाहट की बू आती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं प्रशाई सैन्य विचारक कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ की और उनकी मशहूर किताब ऑन वॉर, वॉर्म क्रीगर। लेकिन ये किताब जितनी मशहूर है उतनी ही शायद गलत भी समझी गई है।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हम क्लॉज़विट्ज़ को सीधे नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन्हें एक दूसरी नज़र से, एक इंटरप्रिटेशन के जरिए देख रहे हैं।
सही कहा, और वो नज़र है 20वीं सदी के एक बहुत ही सम्मानित सैन्य इतिहासकार सर माइकल हॉवर्ट की। उन्होंने क्लॉज़विट्ज़ को, कह सकते हैं, उस छवि से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया।
कौन सी छवि? वो युद्ध के देवता वाली या विनाश के पैगंबर वाली?
हॉवर्ट का तर्क है कि ये विचार सिर्फ टैंकों और तोपों तक सीमित नहीं है, दरअसल ये संघर्ष की प्रकृति के बारे में है, अनिश्चितता में फैसले लेने के बारे में है,
और सबसे बढ़कर
राजनीति और बल प्रयोग के नाजुक रिश्ते के बारे में है। और ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, व्यापार हो या कोई भी जटिल मानवीय काम।
तो क्लॉज़विट्ज़ के विचारों की इस, कह सकते हैं, भूल भुलैया में हमारा गाइड कौन है? सर माइकल हॉवर्ट। थोड़ा इनके बारे में बताइए, ये कौन थे और क्लॉज़विट्ज़ पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत क्यों मानी जाती है?
देखिए सर, माइकल हॉवर्ट कोई सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे। हाँ, वो ऑक्सफोर्ड और येल जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में युद्ध के इतिहास के प्रोफेसर थे, बहुत कुछ लिखा उन्होंने,
लेकिन
उनकी बात में वजन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने खुद युद्ध को बहुत करीब से देखा था। वो सिर्फ थ्योरी नहीं जानते थे, प्रैक्टिकल भी अनुभव था।
आप इनके द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव की बात कर रही हैं?
हाँ बिल्कुल, वे द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक थे, इटली में लड़े और बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस भी मिला था। तो जब वे युद्ध की जमीनी हकीकत या क्लॉज़विट्ज़ के घर्षण जैसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं होती, उसमें उनका अपना अनुभव झलकता है।
और क्लॉज़विट्ज़ पर उनका अधिकार एक और वजह से माना जाता है ना?
हाँ,
वो अनुवाद वाली बात।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पीटर पैरेट के साथ मिलकर क्लॉज़विट्ज़ की मूल जर्मन किताब वॉर्म क्रीगे का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1976 में आया ये अनुवाद, आज भी सबसे सटीक, सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है।
मतलब उन्होंने सिर्फ पारेंट्री नहीं लिखी बल्कि मूल टेक्स्ट के साथ गहराई से जूझकर उसे अंग्रेजी दुनिया के सामने रखा।
एकदम, तो सोचिए उनका सैनिक अनुभव, उनकी अकादमिक गहराई और फिर अनुवादक के तौर पर मूल पाठ की वो बारीक समझ, ये सब मिलकर उन्हें क्लॉज़विट्ज़ जैसे मुश्किल विचारक को साफ साफ समझाने की एक अनोखी काबिलियत देते हैं।
ठीक है, तो हॉवर्ट का मुख्य मिशन क्या था? जब उन्होंने क्लॉज़विट्ज़ पर इतना काम किया तो वो क्लॉज़विट्ज़ की किस तस्वीर को सही करना चाहते थे?
हॉवर्ट का मुख्य मकसद था क्लॉज़विट्ज़ को उनकी बहुत ज्यादा सरलीकृत और अक्सर नकारात्मक छवि से आजाद कराना।
खासकर वो संपूर्ण युद्ध वाली धारणा।
हाँ बिल्कुल, वो धारणा कि क्लॉज़विट्ज़ संपूर्ण युद्ध के पैरोकार थे, मतलब ऐसा युद्ध जिसकी कोई सीमा ना हो, जो सिर्फ विनाश पर खत्म हो। हॉवर्ट कहते हैं कि ये क्लॉज़विट्ज़ को समझने का एक खतरनाक सरलीकरण है, ये सही नहीं है।
तो फिर हॉवर्ट के हिसाब से क्लॉज़विट्ज़ असल में क्या थे अगर वो संपूर्ण युद्ध के पैगंबर नहीं थे तो?
हॉवर्ट उन्हें एक गहरे राजनीतिक दार्शनिक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा विचारक जिसका असल सरोकार युद्ध की प्रकृति को समझना था। युद्ध क्या है? एक जटिल मानवीय गतिविधि, एक राजनीतिक घटना। उनकी किताब ऑन वॉर कोई युद्ध जीतने की रेसिपी बुक नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं।
मतलब ये युद्ध के बारे में सोचने का एक तरीका सिखाती है, ना कि युद्ध करने का।
हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हॉवर्ट जोर देते हैं कि ये युद्ध के बारे में समग्र रूप से होलिस्टिकली सोचने का एक विश्लेषणात्मक ढांचा है, एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क।
और इसे समझने के लिए इतिहास जरूरी है?
बहुत जरूरी। हॉवर्ट क्लॉज़विट्ज़ को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में रखते हैं। वो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के दौर की पैदाइश थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे युद्ध बदल गया था। राजाओं के बीच सीमित खेल से निकलकर वो राष्ट्रों के बीच एक व्यापक जुनून से भरा संघर्ष बन गया था। उनके सिद्धांत हवा में नहीं बने, वो इसी उथल-पुथल भरी हकीकत की सीधी प्रतिक्रिया थे।
और इसी संदर्भ में हॉवर्ट क्लॉज़विट्ज़ के उस सबसे प्रसिद्ध पर शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए कथन पर आते हैं।
आप उसी की बात कर रहे हैं। युद्ध अन्य माध्यमों से राजनीति या नीति की निरंतरता मात्र है।
हाँ वही। हॉवर्ड इसे कैसे समझाते हैं?
हॉवर्ड बहुत सावधानी से स्पष्ट करते हैं कि देखिए, ये वाक्य युद्ध का महिमा मंडन नहीं कर रहा, ये कोई लाइसेंस नहीं है हिंसा का, बल्कि ये एक गंभीर चेतावनी है।
चेतावनी किस बात की?
चेतावनी ये कि युद्ध कभी भी अपने आप में लक्ष्य नहीं हो सकता, उसे हमेशा तर्कसंगत राजनीतिक उद्देश्यों के अधीन रहना चाहिए। अगर सेना लड़ रही है लेकिन उसका कोई स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, या वो उस लक्ष्य से भटक गई है, तो वो लड़ाई, वो हिंसा निरर्थक है, तर्कहीन है।
अच्छा, चलिए अब क्लॉज़ेविट्स के कुछ और केंद्रीय विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, हॉवर्ड की व्याख्या की रोशनी में। शुरुआत करते हैं युद्ध की उनकी मूल परिभाषा से। हॉवर्ड इसे कैसे समझाते हैं?
क्लॉज़ेविट्स की शुरुआती परिभाषा है, युद्ध हमारे दुश्मन को हमारी इच्छा पूरी करने के लिए बल का एक कार्य है।
सुनने में तो सीधा लगता है।
हाँ,
पर इसमें गहराई है।
बिल्कुल। हॉवर्ड बताते हैं कि यहाँ कुंजी शब्द है मजबूर करना और इच्छा। लक्ष्य सिर्फ दुश्मन की सेना को मैदान में हराना नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति को तोड़ना है। ये एक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है, सिर्फ भौतिक नहीं।
और इसी से जुड़ा है उनका वो अंतर, पूर्ण युद्ध और वास्तविक युद्ध के बीच का। हॉवर्ड इसे बहुत महत्व देते हैं ना, ये क्या है?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पूर्ण युद्ध एक तरह का सैद्धांतिक विचार है, एक एक्सट्रीम केस। क्लॉज़ेविट्स कहते हैं कि अगर युद्ध को सिर्फ उसके अपने तर्क पर छोड़ दें, बिना किसी बाहरी रोक टोक के, जैसे राजनीति, मानवीय सीमाएं या जमीनी मुश्किलें, तो वो तार्किक रूप से हिंसा के चरम तक पहुंच जाएगा। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।
लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है ना, हमेशा कुछ रुकावटें होती हैं।
बिल्कुल नहीं होता, और यही वास्तविक युद्ध आता है। हॉवर्ड स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक युद्ध हमेशा सीमित होता है कई चीजों से।
जैसे?
सबसे पहले राजनीतिक लक्ष्यों से। युद्ध किसी उद्देश्य के लिए लड़ा जाता है और वो उद्देश्य शायद पूर्ण विनाश न हो। दूसरा, घर्षण से, यानी जमीनी हकीकत की अनगिनत छोटी बड़ी बाधाएं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और तीसरा, मानवीय स्वभाव से, डर, थकान, हिचकिचाहट। तो हॉवर्ड के मुताबिक कोई भी वास्तविक युद्ध कभी पूर्ण नहीं होता। ये समझना जरूरी है अगर हम क्लॉज़ेविट्स को अंधाधुंध युद्ध के समर्थक की छवि से बाहर निकालना चाहते हैं।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब आते हैं क्लॉज़ेविट्स के शायद सबसे मौलिक मॉडल पर, उनकी अद्भुत त्रिमूर्ति या वंडरस ट्रिनिटी। हॉवर्ड इसे कैसे पेश करते हैं?
हॉवर्ड इसे क्लॉज़ेविट्स के सिद्धांत का दिल मानते हैं। ये युद्ध की जटिल प्रकृति को समझने का एक डायनामिक मॉडल है। क्लॉज़ेविट्स कहते हैं कि युद्ध तीन अलग अलग ताकतों या प्रवृत्तियों के एक अजीब संगम से बनता है, और ये तीनों हमेशा एक दूसरे पर असर डालती रहती हैं।
और ये तीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं?
पहली है आदिम हिंसा, घृणा और शत्रुता। ये युद्ध का अंधा भावनात्मक आवेग है। ये मुख्य रूप से लोगों, मतलब जनता या राष्ट्र के जुनून से जुड़ा है।
अच्छा, मतलब युद्ध का वो इमोशनल, इरेशनल पहलू।
हाँ, कह सकते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है संयोग और संभावना का खेल। ये युद्ध के मैदान की अनिश्चितता है। यहाँ किस्मत, अप्रत्याशित घटनाएं और सेनापति व सैनिकों का साहस, उनकी प्रतिभा, उनकी क्रिएटिविटी काम करती है। ये सेना का डोमेन है।
और तीसरी?
तीसरी प्रवृत्ति है युद्ध का नीति, यानी पॉलिसी के एक साधन के रूप में उसका अधीनस्थ चरित्र। ये पहलू शुद्ध तर्क के दायरे में आता है। ये सरकार या राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ा है। ये युद्ध का रैशनल, उद्देश्यपूर्ण पहलू है।
जुनून, संयोग और तर्क, हॉवर्ड इस त्रिमूर्ति के बारे में क्या खास बताते हैं? इसकी खासियत क्या है?
हॉवर्ड जोर देते हैं कि यह कोई फिक्स्ड ट्रायंगल नहीं है जहां तीनों कोने हमेशा बराबर हों। नहीं, ये एक डायनेमिक, अस्थिर संतुलन है, लगातार बदलता रहता है। किसी भी खास युद्ध का चरित्र इस बात पर निर्भर करता है कि इन तीन शक्तियों, लोगों का जुनून, सेना का कौशल, संयोग और सरकार का तर्क, में से कौन सी ज्यादा हावी है।
मतलब कभी युद्ध ज्यादा जज्बाती हो सकता है?
हाँ, या कभी ज्यादा संयोग पर आधारित, और कभी बिल्कुल ठंडे राजनीतिक हिसाब किताब पर। एक अच्छा रणनीतिकार वही है जो इन तीनों शक्तियों और उनके बदलते संतुलन को समझता है।
और फिर हम वापस उसी मशहूर वाक्य पर आते हैं, युद्ध अन्य माध्यमों से राजनीति की निरंतरता मात्र है। त्रिमूर्ति के संदर्भ में ये वाक्य और भी ज्यादा मायने रखता है ना?
बिल्कुल। ये त्रिमूर्ति के तीसरे तत्व, तर्क और नीति की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। हॉवर्ड बार बार कहते हैं कि क्लॉजविट्स के लिए ये वाक्य हिंसा को जायज ठहराने का बहाना नहीं था, ये एक कठोर तार्किक विश्लेषण था। युद्ध का अपना कोई स्वतंत्र तर्क नहीं होना चाहिए, उसे राजनीति का एक टूल, एक उपकरण बनकर रहना चाहिए।
और उपकरण को हमेशा उद्देश्य के हिसाब से चलना चाहिए।
सही। जैसे ही सेना या युद्ध का संचालन राजनीतिक लक्ष्यों से भटकता है, वो तर्कहीन हो जाता है, चाहे वो मैदान में कितना भी सफल क्यों ना लगे।
ये राजनीति की प्रधानता वाला विचार तो बहुत शक्तिशाली है। अब जरा उस घर्षण यानी फ्रिक्शन की अवधारणा पर बात करते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था। हॉवर्ड इसे कैसे समझाते हैं?
घर्षण क्लॉजविट्स के सबसे प्रैक्टिकल और शायद आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक विचारों में से एक है। हॉवर्ड इसे उन अनगिनत छोटी बड़ी अप्रत्याशित मुश्किलों और बाधाओं के समूह के रूप में समझाते हैं जो कागज पर बनी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच हमेशा मौजूद रहती हैं।
जैसे कि क्या मतलब है इसका असल में?
अरे कुछ भी हो सकता है। सोचिए, खराब मौसम, गलत नक्शे, आदेशों का देर से पहुंचना या गलत समझा जाना, पुल का टूटा हुआ मिलना, सैनिकों की थकान, उनका डर, मशीनें खराब हो जाना, दुश्मन की कोई अप्रत्याशित चाल, ये लिस्ट तो अनथीन है। क्लॉजविट्स का वो मशहूर कोट है ना, युद्ध में सब कुछ बहुत सरल है लेकिन सबसे सरल चीज भी मुश्किल है। वो इसी घर्षण की वजह से होता है।
और यही घर्षण उस चीज को जन्म देता है जिसे युद्ध का कोहरा या फॉग ऑफ वॉर कहते हैं।
हाँ, घर्षण अनिश्चितता पैदा करता है। युद्ध के मैदान में पूरी जानकारी कभी नहीं होती, हालात लगातार बदलते रहते हैं। इसी अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति को युद्ध का कोहरा कहा जाता है। हॉवर्ड बताते हैं कि क्लॉजविट्स का ये विचार हमें याद दिलाता है कि युद्ध कोई सटीक विज्ञान नहीं है, कोई मैथ्स का सवाल नहीं है जिसे हल कर लिया।
इसमें हमेशा अराजकता रहेगी।
हाँ, हमेशा अराजकता, अनिश्चितता और मानवीय कमजोरियों का तत्व रहेगा। ये सिद्धांतकारों और योजना बनाने वालों को विनम्र और यथार्थवादी बने रहने की चेतावनी देता है कि भाई, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है।
क्लॉजविट्स के कुछ और रणनीतिक विचार भी हैं जिन पर हॉवर्ड प्रकाश डालते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या स्वेयर पॉइंट।
हाँ,
ये क्या चीज है?
हाँ, श्वेर पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ये दुश्मन की शक्ति का वो मुख्य आधार या स्रोत है जिस पर उसकी लड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा निर्भर करती है।
ये क्या हो सकता है? सेना?
हाँ, दुश्मन की सेना हो सकती है, या उसकी राजधानी, या कोई महत्वपूर्ण सहयोगी देश, या आजकल के संदर्भ में सोचें तो शायद उसकी अर्थव्यवस्था, या यहाँ तक कि पब्लिक ओपिनियन भी। क्लॉजविट्स का मानना था कि सफल रणनीति का लक्ष्य इसी केंद्र बिंदु को पहचानकर उस पर अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए, फोकस वही होना चाहिए।
और एक और दिलचस्प लेकिन थोड़ा उल्टा सा लगने वाला विचार है, रक्षा युद्ध का मजबूत रूप है। इसका क्या मतलब है? डिफेंस ज्यादा मजबूत है अटैक से।
हाँ, हॉवर्ड समझाते हैं कि क्लॉजविट का तर्क था कि अगर बाकी सब स्थितियां बराबर हों तो बचाव करने वाले पक्ष के पास स्वाभाविक रूप से एक बढ़त होती है, एक एडवांटेज होता है।
क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा का उद्देश्य नेगेटिव होता है, अपनी स्थिति बनाए रखना, नुकसान से बचना, जबकि हमले का उद्देश्य पॉजिटिव होता है, कुछ जीतना, कुछ हासिल करना। इसमें ज्यादा प्रयास, ज्यादा रिसोर्स और ज्यादा जोखिम शामिल होता है। बचाव करने वाला इंतजार कर सकता है, दुश्मन की गलतियों का फायदा उठा सकता है, जबकि हमलावर को लगातार आगे बढ़ना पड़ता है, पहल बनाए रखनी पड़ती है।
अच्छा,
इसी से जुड़ा हुआ विजय का चरम बिंदु, कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ विक्ट्री का विचार भी है।
बिल्कुल।
हॉवर्ड बताते हैं कि क्लॉजविट्स ने देखा कि जैसे जैसे हमलावर सेना आगे बढ़ती है, वो अक्सर कमजोर होती जाती है। सोचिए क्यों? उसकी सप्लाई लाइन लंबी हो जाती है, सैनिक थक जाते हैं, नुकसान बढ़ता है और वो दुश्मन के इलाके में गहरे उतरती जाती है।
तो एक पॉइंट आता है जब वो जरूरत से ज्यादा खिंच जाती है।
हाँ, एक ऐसा बिंदु आता है जब हमलावर इतना कमजोर हो जाता है कि संतुलन रक्षा करने वाले के पक्ष में झुक जाता है। क्लॉजविट्स इसे विजय का चरम बिंदु कहते हैं। हॉवर्ड के अनुसार क्लॉजविट्स की सलाह थी कि बुद्धिमान सेनापति इस बिंदु को पहचाने और आगे बढ़ने के बजाय अपनी जीत को कंसोलिडेट करे, सुरक्षित करे। अगर वो लालच में या बिना सोचे समझे आगे बढ़ता रहा तो
हार निश्चित है, जैसे नेपोलियन का रूस में हुआ।
क्लॉजविट्स ने तो वो खुद देखा था।
हाँ,
वो इसका क्लासिक उदाहरण है। नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच गया लेकिन वो चरम बिंदु पार कर चुका था और वापसी में उसकी सेना का जो हाल हुआ वो इतिहास है। ये सारे विचार, त्रिमूर्ति, घर्षण, राजनीति की प्रधानता, चरम बिंदु, ये सब क्लॉज़विट्ज़ के अपने अनुभवों और उस उथल पुथल भरे युग के गहन विश्लेषण से जन्मे थे। हॉवर्ड इसी बात पर बार बार जोर देते हैं।
तो अगर हम हॉवर्ड की व्याख्या से क्लॉज़विट्ज़ के मुख्य संदेशों को समेटें तो वो क्या होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी चाहिए?
मेरे विचार में सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है राजनीति की प्रधानता। युद्ध अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, यह हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन, एक टूल मात्र है। हॉवर्ड हमें दिखाते हैं कि क्लॉज़विट्ज़ के लिए यह सबसे बुनियादी सच था। जब भी सैन्य कार्यवाही अपने राजनीतिक लक्ष्यों से भटकती है, वो निरर्थक या विनाशकारी हो जाती है।
हाँ, ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है, शायद ज्यादा भी। दूसरा मुख्य संदेश क्या होगा?
दूसरा संदेश है युद्ध की अंतर्निहित जटिलता और अनिश्चितता। क्लॉज़विट्ज़ कोई आसान फॉर्मूला या समाधान नहीं देते। उनकी त्रिमूर्ति और घर्षण जैसी अवधारणाएं दिखाती हैं कि युद्ध तर्क, भावनाओं और संयोग का एक उलझा हुआ अप्रत्याशित मिश्रण है। ये कोई मशीन नहीं है जिसे आप पूरी तरह कंट्रोल कर सकें। हॉवर्ड इस बात पर जोर देते हैं कि क्लॉज़विट्ज़ हमें युद्ध की इस जटिल सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कहते हैं।
तीसरा, शायद उनकी सोचने की पद्धति, वो जो आपने कहा द्वंद्वात्मक तरीका।
हाँ, वो डायलेक्टिकल अप्रोच। हॉवर्ड बताते हैं कि क्लॉज़विट्ज़ अक्सर विरोधी अवधारणाओं को एक साथ रखकर सोचते थे, जैसे पूर्ण युद्ध बनाम वास्तविक युद्ध, हमला बनाम रक्षा, सिद्धांत बनाम यथार्थ। वे इन तनावों और विरोधाभासों की जांच करके गहरी समझ तक पहुंचते थे। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई अक्सर दो एक्सट्रीम्स के बीच कहीं होती है और दुनिया को सिंपल हाँ या ना में बांटना मुश्किल है।
और चौथा महत्वपूर्ण संदेश जो हॉवर्ड के काम से उभरता है वो है गलत व्याख्या का खतरा, मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा।
बिल्कुल, हॉवर्ड दिखाते हैं कि कैसे क्लॉज़विट्ज़ के विचारों को इतिहास में अलग अलग लोगों ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, अक्सर उनके मूल संदर्भ और बारीकियों को नज़रअंदाज करते हुए। ये हमें किसी भी बड़े विचारक या जटिल विचार को समग्रता में उसके सही संदर्भ में समझने की अहमियत बताता है। सिर्फ अपनी पसंद के हिस्सों को चुन लेना खतरनाक हो सकता है।
और अंत में मानवीय तत्व का महत्व, ह्यूमन फैक्टर।
हाँ, हॉवर्ड क्लॉज़विट्ज़ के इस पहलू को भी उभारते हैं। क्लॉज़विट्ज़ सिर्फ रणनीति और योजनाओं की बात नहीं करते, वे साहस, डर, थकान, मनोबल जैसे मानवीय और मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स को बहुत महत्व देते हैं। घर्षण सिर्फ भौतिक नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक भी है। अंततः युद्ध मनुष्यों द्वारा लड़ा जाता है और मानवीय पहलू हमेशा निर्णायक रहेगा।
क्लॉज़विट्ज़ के कुछ कथन इतने शक्तिशाली हैं कि वो सूत्र वाक्य बन गए हैं, कोर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। हॉवर्ड की व्याख्या की रोशनी में कुछ सबसे यादगार विचार या कथन कौन से होंगे जिन पर हमें फिर से सोचना चाहिए?
सबसे पहले तो वही कालजयी वाक्य जिसकी हमने कई बार बात की, युद्ध अन्य माध्यमों से राजनीति की निरंतरता मात्र है। हॉवर्ड की व्याख्या के बाद हम समझते हैं कि ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं बल्कि एक निर्देश है।
निर्देश?
कैसा निर्देश? निर्देश ये कि तर्क को हमेशा हिंसा पर हावी रहना चाहिए और युद्ध का मूल्यांकन हमेशा उसके राजनीतिक लक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।
अच्छा, और दूसरा?
दूसरा उनकी युद्ध की परिभाषा। युद्ध हमारे दुश्मन को हमारी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करने हेतु बल का एक कार्य है। यह हमें याद दिलाता है कि अंतिम लक्ष्य दुश्मन की इच्छा शक्ति को तोड़ना है, न कि सिर्फ भौतिक विनाश,
विल पावर तोड़ना है।
तीसरा, त्रिमूर्ति का विचार।
हाँ।
कि युद्ध हमेशा जुनून, संयोग और तर्क का एक डायनेमिक मिश्रण होता है। किसी भी संघर्ष का विश्लेषण करते समय इन तीनों तत्वों पर विचार करना जरूरी है, वरना हमारी समझ अधूरी रहेगी।
और चौथा, घर्षण का सिद्धांत
और उससे जुड़ा वो कथन। युद्ध में सब कुछ बहुत सरल है, लेकिन सबसे सरल चीज भी मुश्किल है। ये अनिश्चितता, अप्रत्याशित बाधाओं और योजनाओं की सीमाओं के बारे में एक शाश्वत चेतावनी है। यह हमें यथार्थवादी रहने और लचीलेपन के महत्व की याद दिलाता है।
जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हॉवर्ड हमें दिखाते हैं कि क्लॉज़विट्ज़ के ये विचार सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, इन्हें जीवन के अन्य क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है।
ये बहुत दिलचस्प है। व्यापार की दुनिया को ही देखिए, क्या कोई कंपनी बिना किसी स्पष्ट व्यावसायिक लक्ष्य यानी राजनीति के कोई बड़ा कदम उठा सकती है? शायद नहीं। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नए बाजार में जाना है, ये सारे निर्णय कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी से जुड़े होने चाहिए, है ना?
और घर्षण तो व्यापार में हर कदम पर मौजूद है। सप्लाई चेन में रुकावटें, कॉम्पिटिटर्स की चालें, बाजार का बदलता मूड, टीम के अंदर कम्युनिकेशन की समस्याएं।
हाँ, ये सब व्यापार जगत का घर्षण है। सफल लीडर वही है जो इन बाधाओं का अनुमान लगाता है और उनसे निपटने के लिए लचीली योजनाएं बनाता है, कंटिंजेंसी प्लानिंग करता है।
प्रतिस्पर्धी के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या ये उनकी ब्रांड इमेज है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या उनकी टेक्नोलॉजी? रणनीति अक्सर इसी केंद्र पर फोकस करती है।
और विजय का चरम बिंदु का सिद्धांत उन कंपनियों के लिए एक चेतावनी है जो बहुत तेजी से विस्तार करती हैं बिना अपनी क्षमता का ध्यान रखें और अंततः कमजोर पड़ जाती हैं, ओवरस्ट्रेच कर जाती हैं।
राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो ये सिद्धांत सीधे सीधे लागू होते हैं। हॉवर्ड इशारा करते हैं कि कई आधुनिक संघर्षों में जहां राजनीतिक उद्देश्य साफ नहीं थे या सैन्य साधनों के अनुपात में नहीं थे, वहां परिणाम विनाशकारी रहे।
हाँ, किसी भी सैन्य कार्रवाई या कठोर कूटनीतिक कदम से पहले यह सवाल पूछना कि राजनीतिक लक्ष्य क्या है, ये क्लॉज़विट्ज़ की सबसे बड़ी सीख है।
यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी, है ना? किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसका स्पष्ट उद्देश्य यानी उसकी नीति तय करना जरूरी है।
बिल्कुल। और प्रोजेक्ट मैनेजर को अप्रत्याशित समस्याओं यानी घर्षण के लिए तैयार रहना पड़ता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी बड़े फैसले लेने से पहले यह सोचना कि अंतिम लक्ष्य क्या है, हमें अनावश्यक लड़ाइयों में उलझने से बचा सकता है।
तो अगर हम सर माइकल हॉवर्ड की क्लॉज़विट्ज़ की व्याख्या से अंतिम सबक लें तो वो क्या होगा, सबसे बड़ी सीख क्या है?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि क्लॉज़विट्ज़ को युद्ध का पैगंबर समझने की भूल न करें। हॉवर्ड उन्हें एक गंभीर यथार्थवादी राजनीतिक विचारक के रूप में फिर से स्थापित करते हैं, एक ऐसा विचारक जिसने युद्ध की भयावहता को समझा लेकिन उसे हमेशा तर्क और राजनीतिक उद्देश्य के अधीन रखने की वकालत की।
युद्ध या किसी भी संघर्ष को उसकी मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक जटिलता में देखना जरूरी है, सिर्फ एक तकनीकी समस्या के रूप में नहीं।
सही कहा। और उनकी त्रिमूर्ति और घर्षण जैसी अवधारणाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि वे हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, व्यापार हो या राजनीति, हमेशा अनिश्चित, अप्रत्याशित और मानवीय भावनाओं और संयोग से भरी रहेगी। क्लॉज़विट्ज़ हमें इस जटिलता को समझने का एक ढांचा देते हैं, न कि उसे अनदेखा करने का।
रणनीति सिर्फ योजना बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के बारे में भी है, अडैप्ट करने के बारे में है।
बिल्कुल।
शायद ये विचार हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए एक बिंदु दे सकता है। देखिए, आज की दुनिया जो तकनीक से इतनी ज्यादा संचालित है, हमारे पास रियल टाइम डेटा है, सैटेलाइट इमेजरी है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, तो क्या इसने क्लॉज़विट्ज़ के घर्षण और युद्ध के कोहरे को कम कर दिया है?
या फिर तकनीक ने बस नए प्रकार के घर्षण और नई तरह की अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं? क्या आज भी सबसे सरल चीज उतनी ही मुश्किल है?
हाँ, ये सोचने लायक सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।